Winter thrills await at Winterfest at Nemacolin. Join the fun on Saturday, February 10th for a day of fun-fueled winter festivities like skiing and snowboarding, snow tubing, ice skating, and snow bikes. You'll be able to meet the Nemacolin Dog Sled Team, try your hand at ice bowling, compete in the out-cold race, and finish your day with a brew by the fire at the peak. A winter of wonders waiting for you at Nemacolin's Winterfest. Experiences are for overnight guests and members. For more information, visit nemacolin.com.
नमस्कार, सतीश झा शो में आपका स्वागत है। तो ईरान के विदेश मंत्री भारत आ गए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता ने पैगंबर के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहीं कि तमाम देशों को आपत्ति हुई और कुछ लोगों ने पहल की। ईरान के विदेश मंत्री भारत आए और वो प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री से और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से मिले। अंत में बात यह तय हुई कि भारत सरकार संविधान के हिसाब से चलती है, हर धर्म का सम्मान करती है, किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं समझती, यानी कि सर्व धर्म संभाव की जो बात है वो कम से कम औपचारिक रूप से हमारी सरकार की नीति है। वो अनौपचारिक रूप से क्या कर रही है वो अलग बात है। जैसे ये बात हो रही है इसके बावजूद हर जगह से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो वारदातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि फ़कीरों को फ़कीरी नहीं करने दी जाती, दुकानदार अगर मुसलमान हो तो उनकी दुकान हटा दी जाती है, अगर वकील हो तो उस वकालत भी कर दी जाती। पार्लियामेंट स्ट्रीट में दिल्ली में जहाँ भी हमारा जो मंदिर है लोकतंत्र का संसद के पास में, संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन पर मुजीबुर रहमान नाम के वकील को 12 घंटे तक रुक दिया जाता है। उनको वीडियो अपना बनाना पड़ता है कि मेरी मदद कीजिए कि मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं किसी को यहाँ से निकालने आया था और उन्होंने मुझे उल्टे बैठा दिया है। वकीलों को वकालत नहीं करने दिया है कि उनका नाम अगर मुजीबुर रहमान हो, ऐसा नाम हो तो एक तो औपचारिक स्तर पर हो रही बात और एक अनौपचारिक स्तर पर। जहर इतना गहरा फैल चुका है कि हर आदमी अगर कोई मुसलमान है उसके खिलाफ कुछ भी कह सकता है। अगर आपका नाम कहता है कि आप मुसलमान हो सकते हैं, उतना ही काफ़ी है कि आपके साथ वो बर्ताव नहीं हो जो आमतौर पे एक नागरिक के साथ होना चाहिए। तो इसके साथ एक बहुत नई बात आपको सुनने को मिलेगी। राज्यसभा के चुनाव आज हो रहे हैं। इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो 303 शायद सांसद हैं लोकसभा में, 95 हैं राज्यसभा में और करीब 1350 के आसपास MLA देश भर में, इन सब में एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं होगा 7 जुलाई के बाद, जब ये लोग सब शपथ लेंगे, नए चुने हुए लोग राज्यसभा के लिए सांसद, उसके बाद से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा। यानी कि सबसे बड़ी सरकार की जो पार्टी है उसमें कोई भी हमारा मुसलमान प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। 7 भारतीयों में से 1 मुसलमान है, 6 हिंदू और दूसरे धर्मों के हैं, तो 7 में से 1 को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कोई भी समाज हो उसमें 15% लोगों को कोई, जो कि एक गुट हो, एक समुदाय हो, एक अपने आप में एक तरह की सोच रखने वाला, ये धर्म के नाम पे किसी भी नाम पे ऐसा एक समुदाय हो जिसको आप सरकारी प्रक्रिया से बिल्कुल दूर कर दें, तो क्या इसको हम कहेंगे कि हमारा जनतंत्र सबको रिप्रेजेंट करता है? इस पे भारतीय जनता पार्टी में तरह तरह के विचार हैं। वो कहते हैं कि शायद हम धर्म के नाम पे बांटते नहीं हैं। तो भाई अगर आप नहीं बांटते हैं तो आपने 7 में से 1 को कैसे भूल दिया, भूल गए आप उनको, इस तरह भूल गए, जानबूझ के भूल गए और आप भुला देना चाहते हैं, वो तो दिख रहा है। तो धर्म के नाम पे आप सीटें देते नहीं हैं, आप उनसे ले लेते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं कि आप पास टैलेंट नहीं है। अगर वो होता तो तमाम, अगर आप देखें लोकसभा में उनकी संख्या करीब करीब 50 के आसपास रही है, कुछ कम कुछ बेसी, और 500 में से 525 में से अगर 50-52 हैं तो 10% हो गए, 15 नहीं 10% तो है। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन पूरा हो ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ना हो ये बहुत बड़ी बात है। तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हम उन्हीं को देते हैं जो काबिल है, तो क्या उस समाज में कोई काबिल नहीं है? वो कहते हैं कि हम तो संविधान के तरफ चलते हैं, जो ठीक हैं वो मिल जाते हैं हमें रख लेते हैं, लेकिन अब तो आप सबको गिन गिन के निकाल रहे हो, जो आपके सांसद थे राज्यसभा में उनको भी आप निकाल रहे हो। तो अगर जो ये भावना है कि एक धर्म को हम किसी भी तरह से इग्नोर करते जाएंगे, मानते हैं वो हमको दिखते ही नहीं हैं, वो अदृश्य हो गए, और जब भी दिखेंगे तो उनके ऊपर हम आरोप लगाएंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, तो उनको अदृश्य बनाने की जो एक जो प्रक्रिया है वो चालू है। और उस पर आप देखें तो किसी की सुनवाई नहीं है, हमारी कोर्ट कचहरियाँ, हमारा प्रशासन, हर जगह एक मुश्किल है कि एक समुदाय सात में से एक उसको अदृश्य किया जा रहा है। सिर्फ कुछ जगहों पे जहाँ पे है उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं कि ये मुसलमानों को बहुत आश्रय देती हैं, वहाँ उनकी तादाद कुछ ज़्यादा भी है बंगाल में, आसाम में उनके ऊपर देख रहे हैं कैसे हमला हो रहा है, केरल में ठीक है थोड़ी बहुत उनके पास जगह है, अपनी जगह बना रखी है उन्होंने, तो बंगाल और केरल के अलावा और कुछ जो दक्षिण भारतीय कर्नाटक को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी अभी मुश्किल शुरू हो गई है, चाहे तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश, लेकिन फिर भी दक्षिण के राज्यों में थोड़ी जगह बनी हुई है, लेकिन बाकी उत्तर के राज्यों में तो एक जैसे कि उनके ऊपर अंग्रेजी में कहते हैं ओपन सीजन, यानी कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि ना उनको दुकान चलाने देंगे, ना भीख मांगने देंगे, ना वकालत करने देंगे, कुछ भी करने देंगे। तो ऐसे में हम कैसे कहेंगे कि हम संवैधानिक तौर पर एक जनतांत्रिक ढांचे के साथ काम कर रहे हैं? तो भाजपा के साथ ये है कि उन्होंने सरकार को उसके नाम पे जो भी कहा हो, पार्टी के नाम पे उनकी समझ अभी भी वही है। तो दुनिया को तो आप कह सकते हैं कि सरकारी जो हमारा नज़रिया है वो अलग है, संविधान का है, लेकिन पार्टी के बारे में क्या करेंगे आप? जब बातें इस तरह की फिर सामने आएंगी, फिर लोग देखेंगे। तो एक साहब हैं जो पुराने IAS हैं, वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक और नया एक शगुफा छोड़ा है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इस बात को अंतर्राष्ट्रीय किया है वो देशद्रोही है। वह बताइए, आज की दुनिया में कोई बात छुपी तो रहती नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ एक देश का नहीं है, वो वैश्विक है, हम किसी भी देश का सोशल मीडिया कहीं देख सकते हैं, और ये बात छुपी रहती नहीं है, इसका जिक्र होगा, जो भी बात देश में होगी छुपी नहीं रहेगी, यहाँ कोई दीवार नहीं है जिसे हम लोग झांक नहीं सकते। आज की तारीख में कोई भी देश, कोई भी समाज, वो अपने आप में सिमट कर नहीं रह सकता, अपने आप को बंद नहीं कर सकता, नॉर्थ कोरिया भी नहीं कर पाया है, वहाँ से भी खबरें आती रहती हैं। तो इसको कहना कि जो लोग खबरों को साझा करते हैं वो देशद्रोही हैं, अपने आप में जो ऐसा कहे वही देशद्रोही है। देशद्रोही कौन है? जो संविधान की बातें नहीं मानता वो देशद्रोही है। तो जिस IAS अफसर ने ऐसा कहा है वो देशद्रोही असली होना चाहिए, माना चाहिए, क्योंकि उसने संविधान के खिलाफ बात की है। हमारी जो एक एक ही लिटमस टेस्ट हमारा होना चाहिए वो है कि ये बात संविधान परक है या उससे अलग है। संविधान परक है, उसकी जगह है, उससे अलग है, तो वो देश के खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसको कहने की जगह होनी चाहिए। देश के खिलाफ है तो भी कहने की अभिव्यक्ति आज़ादी के नाम पर उसकी जगह मिलनी चाहिए, और वही एक असली पहचान है जनतंत्र की। अब आप देखें, अभी जो अमेरिका में January 6 को जो ट्रंप ने अपने ही सरकार के खिलाफ एक कू का ऐलान, उसका प्लान योजना बनाई थी, उसकी जो वीडियो दिखाई गई कल, उसको देख के अमेरिका के विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका की राजनीति में जनतांत्रिक जो वहाँ का जो ढांचा है उसमें एक अभूतपूर्व दिन है, जबकि साफ साफ दिखाया गया कि एक राष्ट्रपति जो कि पदासीन है वो इस तरह की खुराफात कर रहा है, एक साजिश कर रहा है कि वो हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना रहे। उसके लिए उसने उपराष्ट्रपति से कहा, उनकी व्यवस्था में जो कहते हैं कि सर्टिफाई मत करो इलेक्शन को, लेकिन पेंस ने ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से अमेरिका डेमोक्रेसी बच गई। जब उन्होंने देखा वो वीडियो सब जोड़ करके, तो सबको इतना ताज़ुब हुआ और ऐसा कुछ डर भी लगा कि हमारा जो लोकतंत्र है इतना नाजुक है कि एक आदमी उससे कब बैठ के ऐसा कुछ कर सकता था। फॉक्स न्यूज़ चैनल ने पहले मैंने बात की आपसे, उसने उसको दिखाया तक नहीं क्योंकि उसके लोग उस पर शामिल थे। ये बात भी सामने आई कि जो ट्रंप के जो बहुत करीबी लोग थे, अखबार वाले और उसके अपने प्रेस वाले, वो भी कह रहे थे कि वहाँ एक धारा 25 है जिसके तहत राष्ट्रपति को अगर पागल घोषित कर दिया जाए उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। वहाँ तक बात पहुँच गई थी 6 जनवरी को। उस पर जो बात हो रही है उसमें भी देखिए, तो सब मुद्दा इसी बात पर आता है, अभिव्यक्ति पर आता है। इसके बावजूद कि वहाँ पे एक सरकार का सत्ता बदलने की गुंजाइश थी, उन्होंने ये बात स्वीकार की कि अभिव्यक्त की आज़ादी को हम कम नहीं होने देंगे उसके बावजूद। तो हम कहाँ तक लोगों को आज़ाद करते हैं अपनी बात कहने के लिए, वो बताता है कि हम कितने ही जनतांत्रिक हैं। हर बात पे डिफेमेशन, हर बात पे सेडिशन, हर बात पे इस तरह की बातें करने वाला देश जनतांत्रिक नहीं हो सकता। अभी देखिए, उन्होंने जब पुलिस में ये इस मुद्दे पे जो बात हुई, जो पुलिस ने कोशिश की गिरफ्तार करने को या केस एक व्यक्ति के खिलाफ करने को, तो उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए तमाम लोगों के खिलाफ भी कर दिया। तो अगर नूपुर को उसके खिलाफ करना है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो सबा नफी के खिलाफ ही करेंगे। ये जो है एक नया तरीका उन्होंने निकाला है। किसी भी तरीके से अगर मुसलमानों को हम डरा धमका सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, तो वो सही है। ऐसा सरकार की व्यवस्था में चल रहा है, जबकि हमारा मानना है कि कहने की जो आज़ादी है वो तय करती है कि हम कितने जनतांत्रिक हैं। कहने के लिए किसी के ऊपर कोई आरोप लगना नहीं चाहिए। डिफेमेशन की बातें जो होती हैं, जो एक जानबूझ के किसी को डिफेमेशन किया जाए, बात समझ आती है। लेकिन अगर आप नीति के संदर्भ में किसी के ऊपर कोई भी बात कह रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, उसे हम कैसे कहें कि वो जनतंत्र में संभव नहीं है, या उसके ऊपर हम सेडिशन चार्ज लगाएंगे या उसको डिफेमेशन की बात करेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ जो परिपक्वता नहीं आई है, हमारा जो लोकतंत्र है बहुत ही पचकाना सा है। वैसे 75 साल की उम्र कम नहीं होती, लेकिन 75 साल में 64 से 68 साल तक हम तरक्की कर रहे थे, उस 8 साल से हम फिसलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहुमत की पार्टी है उसने तय कर लिया है कि देश जो है वो सबका नहीं है, वो सिर्फ हिंदुत्ववादियों का है। बाकी लोग उनको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अदृश्य हो जाए। और इस बात पे हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसे कैसे हो गए। ईरान के प्रधानमंत्री ने हम सबसे ये कहा कि भारत की जो परंपरा है उसमें हर धर्म को बराबरी से स्वीकार किया गया है। भारत अपने आप इंक्लूसिव देश है, हर तरह के लोग यहाँ आए और बसे, ये इसकी महत्ता है, ये इसका बड़प्पन है, ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। अब इस बात को आप ये कह के कि दूसरे लोग खराब हैं, भाई बहुत तो बहुत खराब हैं, तो क्या हम खराब हो जाएंगे? हमें तो अपना नेतृत्व दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि हम इस जो हमारे मूल्य हैं इतने ऊंचे हैं उस हिसाब से चलते हैं। और हमेशा हम ऐसी कोई नई सीढ़ी पार करते हैं जो और कोई नहीं पार कर पाया, तो हमेशा सीढ़ी ऊपर चढ़ने की बात हम करेंगे, नीचे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो तरक्की का मतलब होता है कि हम हमेशा हर आदमी को उसका उचित स्थान दें, जितने भी जो हमको बांटती हैं चीज़ें उन सब से ऊपर उठें, और जहाँ भी संभावना हो हम सबको जो है जोड़ के हर एक को जगह दें अपनी बात कहने की, और उसके आधार पर जो भी नीति बनाएं, इससे कि सबको लगे कि हम उसका हिस्सा हैं। कभी भी ये परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट हो जाए तो फिर अपने आप ही हम लोग भगवान बन जाएंगे। परफेक्शन की बात नहीं हो रही है, लेकिन दिशा वो होनी चाहिए कि हम कैसे सबको बराबर का सम्मान दें, हर धर्म, जाति, रंग, जो भी जितनी चीज़ों से हमारे यहाँ चीज़ें बढ़ती हैं उन सब के बावजूद कैसे जोड़ा जाए। तो एक ज़माना था जब हम बांटने के लिए चीज़ बनाते थे, आज हमारी जो समृद्धि है, जो तकनीक है, जो मानवीय विकास हुआ है, उसके तरह हमें जो भी कदम ले हमें सोचना पड़ेगा हम कैसे ऐसा करें कि सबका एक प्रतिनिधित्व हो, सबकी आवाज़ सुनी जाए, उसके आधार पे कुछ चीज़ें बने जिससे कि हम कह सकें कि हम वाकई जनतांत्रिक हैं। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।